Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.
Hare Krishna, Hare Krishna.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी बीआई फाउंडर आचार्य से द होल वर्ल्ड मोस्ट मर्सीफुल एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिदंडी गोस्वामी महाराज की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गिरिधारी गो गोपीनाथ राम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू द असेंबल devotees All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, Savior of the whole world, the most merciful. A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki. Gaurari Premanande. Om Namo. भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यां भागवत भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवती नैष्टकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 श्लोक श्रृंखला 35 36 अध्याय 6 जिसका शीर्षक है पूतना वध पूतना लोकबालग्नि राक्षसी রুদির আসনা জিঘাম সয়া আপি হরায়ে স্তনম দত্বা অপা সতগতিম কিম পুনঃ শ্রদ্ধায়ে ভক্তিয়া কৃষ্ণয়া পরমাত্মনে যাচন প্রিয়তনম প্রিয়তমম কিম নু রদ্ধ তত মাত্রহ যতা উদনা লোক বালাগ্নি রাক্ষসী রুদিরাসনা জিঘাংসম অপি হরায় স্তনম তদ্বপ সদগতিম কিম পুনঃ শ্রদ্ধায় ভক্তায় বলিয়ে শ্লোক নম্বর 34 কিম পুনঃ শ্রদ্ধায় ভক্তায় কিম পুনঃ শ্রদ্ধায় ভক্তায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে কৃষ্ণায় পরমাত্মনে যাচন প্রিয়তমম কিন্নু যাচন প্রিয়তমম কিন্নু রক্তস্তন মাত্রয়তা রক্তস্তন মাত্রয়তা কিম পুনঃ শ্রদ্ধায় ভক্তায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে যাচন প্রিয়তমম কিন্নু রক্তস্তন মাত্রয়তা কিম পুনঃ শ্রদ্ধায় ভক্তায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে যাচন প্রিয়তমম কিন্নু রক্তস্তন মাত্রয়তা রক্তস্তন মাত্রয়তা রক্তস্তন মাত্রয়তা মাতাজি। पेशेवर राक्षसी पुतना लोकबाल अग्नि, जो मनुष्य के बालकों को मार डालती थी, राक्षसी राक्षसी रुदिर आसना खून की प्यासी जिगाम सया, कृष्ण को मार डालने की इच्छा से कृष्णा से ईर्ष्या करने के तथा कंस द्वारा आदेश दिए जाने से अभी भी हर ये भगवान को स्तनम अपनी स्तन दत्वा प्रदान करके आप प्राप्त किया सतगतिम वैकुंठ का सर्वोच्च पद की क्या कहा जाए। पुनः फिर श्रद्धाया श्रद्धा युक्त भक्तया भक्ति पूर्वक कृष्णाया कृष्ण को परमात्मने परम पुरुष याचन भेंट करते हुए प्रियतमम अत्यंत प्रिय किं कुछ नु निसंदेह रक्ता संबंधी तत्मात्रा। कृष्ण की स्नेहमयी माताएं यता जिस तरह अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की पूतना सदैव मनुष्यों की बालकों के खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह तथा और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी जैसे कि माताएं करती रहती है। आप सबको समझ में आया? फिर से अनुवाद मैं पढ़ूंगा। आप लोग मेरे साथ दोहराइए। बहुत सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी महाराज भाव विभोर होकर इस श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। आप अनुवाद को भाव विभोर होकर उच्चारण कीजिए। पुतना सदैव मनुष्यों, आप लोग भाव विभोर हो गए लगते, स्तंभित हो गए, मूर्छित अवस्था आपको प्राप्त कर लिए लगते। पुतना सदैव मनुष्यों के, बालकों के खून की प्यासी रहती थी, और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने गई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। तो बला उनके विषय में क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था, और जिन्होंने अपने स्तन पान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसे कि माताएं करती रहती है। यानी कि पुतना को इतना पद मिल, बड़ा पद मिल गया, जो ईर्ष्या के साथ ये काम किया, तो प्रेम से काम किया हो तो क्या मिलेगा उसे। ये श्लोक सुनकर सुखदेव गोस्वामी महाराज पूरी तरह से, जो ब्रह्म में लीन थे, अब सेवा में लीन हो गए, भक्ति में लीन हो गए, भगवान के सौंदर्य और भगवान के इस अवधार्य गुण को देखकर वे पूरी तरह से बदल गए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। पुतना को कृष्ण से कोई स्नेह न था, प्रत्युत वह उनसे ईर्ष्या करती थी और उन्हें मार डालना चाहती थी, फिर भी जाने अनजाने उसने उन्हें स्तनपान कराया और परम गति प्राप्त की। किंतु वात्सल्य प्रेम में अनुरक्त भक्तों की भेंट अत्यंत निष्ठायुक्त होती है। माता अपने पुत्र को स्नेह तथा प्रेम से कोई वस्तु भेंट करना चाहती है, तो उसमें ईर्ष्या का लेश भी नहीं रहता। अतः हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यदि पुतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्या पूर्वक स्तनपान करा कर आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो भला माता यशोदा तथा अन्य गोपियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाड प्यार के साथ की और कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु भेंट की। गोपियों को स्वतः परम पद प्राप्त हुआ, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों की स्नेह को ही जीवन के सर्वोच्च सिद्धि बतलाई। रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे नवा कल्पिता, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्री चैतन्य मनो अभिस्तम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरद्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशवि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण और इनसे दयालु कौन हो सकते हैं, यह भाव इस श्लोक पे प्रकट किया जा रहा है। तो ऐसे परम दयालु एवं कृपालु भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौरनीताय, श्रील प्रभुपाद और इन भगवान के परिकर सहित के पाद पद्मों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महा अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण ये वैष्णव संतों का परम धन है, ये परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी गोस्वामी महाराज जी बड़े भाव विभोर होकर इन बातों को दोहरा रहे हैं। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी महाराज के जीवन में, जो कि पूरी तरह से अपने लीला के अंतर्गत इस भूलोक में व्यासाखी अर्थात व्यासदेव के पुत्र बनकर वे ब्रह्म के लीन में ब्रह्म के उपासक बने, व्यासदेव महाराज जी ने अपने दो प्रिय शिष्य को भेजे और उनसे पुतना की वध एवं पुतना उद्धार ये श्लोक का उच्चारण, जिसमें भगवान का जो सर्वोच्च गुण है कि वे बड़े दयालु है, इनका औदार्य यहाँ पे प्रकट होता है। उनके गुणों का, औदार्य गुण का यहाँ पे उल्लेख हो रहा है। और दूसरा एक श्लोक जो भगवान के सौंदर्य रूप माधुर्य का वर्णन कराता है, ये दो श्लोक सैंपल के रूप में भेजे। नटवर वपुर करलीता, तो ये दो श्लोक सुनकर सुखदेव गोस्वामी महाराज अपने ब्रह्म का जो चिंतन है उसे त्याग कर तड़पने लगे। कहा कि कौन है वो व्यक्ति, कौन है व्यक्ति इतना दयालु, इतना कृपालु, जो इसे ईर्ष्या करके मारने आ रहे हैं उनको भी एक सर्वोच्च पद उत्पन्न करा रहा है। ऐसा व्यक्ति को मैं मिलना चाहता हूं। प्राय इस जगत में देखा जाता है लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अगर किसी ने हम पे हमला किया पत्थर से, ईंट से, तो हम उसे पत्थर से जवाब देंगे, और पत्थर से किसी ने हमें हमला किया तो हम उसे लोहे से जवाब देंगे, और किसी ने लोहे से हमला किया है तो हम उसे बंदूक से जवाब देंगे, और किसी ने बंदूक से हमारे पर हमला किया तो हम उसे तोप से जवाब देंगे, यानी कि टिट फॉर टैट, इंट का जवाब पत्थर से ऐसे देते हैं। तो कृष्ण को जहर दे के मारने वाले आई थी, तो हमारे इस भौतिक जगत में अगर ऐसा घटना घटी तो उसे पुतना का क्या हाल, अगर पकड़ में आया होता तो क्या हाल लोग कर लेते। मेरे बच्चे को मारने आए थे, मुझे मारने आया था, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। पर पुतना को भगवान ने सर्वोच्च पद दे दिया, सर्वोच्च पद। ये भगवान का औदार्य, पुतना इसका लायक नहीं है, वो नालायक है, लायक नहीं है, ना लायक नहीं है वो, पर फिर भी कृष्ण उनके इस कुकर्म को ना देखते हुए, उनके इस भाव को देखकर मात्र का, माता का गति प्रदान कर रहे हैं। ये भगवान का सुंदर गुण का प्रचार होना चाहिए। जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज भगवान के प्रति आकर्षित हुए, इसी प्रकार से भगवान का इस औदार्य गुण का जब बकान होगा, प्रचार होगा, पत्थर हृदय वाले भी भगवान से आकर्षित होकर भगवान के भक्त बनेंगे। और आज के समय पर ये बताना बहुत जरूरी है, ये भगवान का सौंदर्य है, गुण का सौंदर्य। आज भगवान को छोड़कर लोग औरों में अपना मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान का आज्ञा है कि मया आसक्त मन पार्थ, मुझ में आसक्त हो जाओ। पर लोग आसक्त कैसे होंगे भगवान में, जब भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, भगवान के सौंदर्य के बारे में नहीं जानते हैं, भगवान के सुंदर गुणों के बारे में नहीं जानते हैं। आज लोग इतना दुखी है कि वे धन से आसक्त हो रहे हैं, तन से आसक्त हो रहे हैं, तन के प्रति आसक्त हो रहे हैं, धन के प्रति आसक्त हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को धन का शक्ति पता है, धन से सब कुछ खरीद लेंगे, ऐसा उनका मंतव्य है। पर यह भगवान का ये सुंदर गुण का जब प्रचार होगा, ऐसा व्यक्ति भी भगवान से आसक्त हो जाएंगे। मैं आसक्त मन पार्थ, भगवान कहते हैं। आज ऐसा विषम समय है, महान संत आदि शंकराचार्य कहते हैं आसक्त इस जगत में लोग कैसे भगवान में आसक्त होंगे, कैसे हो सकते हैं। तो कहते हैं बाल असक्त, बाल अवस्था क्रीड़ा आसक्त, तरुण अवस्था तरुणी आसक्त, वृद्ध अवस्था चिंता आसक्त, कतोपि न ब्रह्म आसक्त। कैसे कोई भगवान में आसक्त हो सकता है, उनको ऐसा ऐसा अभ्यास या ऐसा प्रशिक्षण या ट्रेनिंग मिला ही नहीं। बाल अवस्था में सहज सब लोग खेल कूद में आसक्त होता है, बाल अवस्था क्रीड आसक्त। तरुण हो जाते हैं तो बोलते हैं मेरा सुंदर, मेरा शरीर बहुत तगड़ा हो गया और इनका शरीर बहुत सुंदर हो गया, तरुण अवस्था तरुणी आसक्त, तरुणी पे आसक्त हो जाते हैं। तो ऐसे आसक्ति बदलता रहता है और जब वृद्ध हो जाते हैं तो कहते हैं मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, अब मुझे कौन खाना पीना पिलाएगा, दवाई कौन लाएगा, चिंता आसक्त। तो ऐसे अवस्था में कौन भगवान का इस आज्ञा को पूरा करेगा? माया आसक्त, भगवान में कौन आसक्त होगा? भगवान में आसक्त तब होंगे इस जगत के लोग जब वो देखेंगे, अरे इतना बदमाश, मुझसे भी गया गुजरा व्यक्ति पूतना, उनको ये पद मिला, मैं तो उससे बड़ा अच्छा हूं, चलो मैं भगवान को एक फूल दे देता हूं, द्वेष से नहीं प्रेम से, तो मेरा क्या गति होगा? ऐसे सोचकर लोग भगवान के पास आएंगे। इस श्लोक का भाव सरल शब्दों में अगर हम कहेंगे तो ऐसा है कि अगर कोई आकर आपको तमाचा मारे, एक बार मैं कह रहा था, अगर कोई आके आपको तमाचा मारे तो आप उनको 10 लाख दोगे? 10 लाख लात नहीं, 10, ठीक है 10 करोड़ देंगे। तो मैं जैसे ही ऐसा कहा फिर अगला सवाल में पूछा, तो ऐसे व्यक्ति जैसे आप है, आपको एक बहुत ही उदार दिल वाले हैं, आपको किसी ने चाटा मारा तो आपने 10 करोड़ दे दिया, तो आगे आप क्या करोगे? ऐसा जब पूछा तो श्रोताओं में से एक का मैं और 2-3 झापड़ मार लूंगा ताकि 10 का 20, 20 का 40 हो जाए। तो और मारने वाले को करोड़ों में देता है धन, तो अगर हम प्रेम से उनको एक भेंट देंगे तो जरूर 1000 करोड़ लाख करोड़ रुपया हमें देंगे, ये भाव है। ऐसे उदार दिल वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इस बात का अगर पूरे जगत में प्रचार हो जाए, बुरे से बुरे व्यक्ति भी भगवान के भक्त बन जाएंगे। बोले आज तक मैं भगवान के लिए कुछ नहीं किया, पर ये ऐसा व्यक्ति है मारने वालों को भी तार देते हैं, तो चलो मैं भी कुछ कर लेता हूं। तो भगवान का ये औदार्य का गुण है। भगवान स्वतंत्र है, कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है कि पूतना को कैसे आपने इतना सर्वोच्च पद दे दिया, हमने तो मंदिर आने के बाद 3 साल तक काउंसलर के अंदर 16 माला का जप किया, फिर जाके कंटी माला मिला, फिर जाके हम मंगल आरती आए तब जाके हमको दीक्षा 5 साल के बाद मिला, हमारे काउंसलर ने रिकमेंड किया। पूतना का कौन काउंसलर है? पूतना का कौन गुरु है? कहां पे उसने 16 माला मंगल आरती किया, उसको कैसे इतना परम गति मिला? ऐसा कंप्लेन कर सकते हैं, पर भगवान स्वतंत्र है। अच्छा, पूतना बगैर मंगल आरती और गुरु प्राप्ति करके इतना सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया, तो हमने इतने दिन से काउंसलर के अंडर 16 माला जप किया और काउंसलर ने गुरु दीक्षा दिलाया और आज हम लोग 16 माला रोज कर रहे, तो हमारा क्या हाल होगा? पूतना को जो मिला गति, उससे करोड़ों गुना ज्यादा गति हम सबको प्राप्त होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे राम कृष्ण चंद्र भगवान की। पूतना का उद्धार करके भगवान अपने दिव्य लीला या दिव्य कर्म को यहाँ पे शुरू करा रहे। भगवान का दिव्य जन्म हो चुका है और यह है भगवान का दिव्य कर्म। नीच से नीच, एकदम पतित, इतना ईर्ष्या, इतना भयंकर राक्षसी पूतना, आज तक हमने अनेक अनेक बदमाशों के बारे में सुने, पर हमने आज तक सुना नहीं कि किसी ने बच्चे को जहर पिलाया। भागवत में 6 स्कंद में चित्रकूट का पुत्र हर्ष शोक को जहर पिलाया गया था, पर वो तो दूध में मिलाकर, पर ये इतना नीच है, कोई सोचा भी नहीं होगा कि स्तन में जहर डालकर, जहर स्तन में जहर डालकर बच्चे को दूध पिलाया जाए। आज तक कितने सारे हॉरर मूवीज आए हैं, कितने सारे खतरनाक से खतरनाक चित्रपट और कथाएं लौकिक जगत में लिखा गया है, पर इससे भयंकर ये बहुत ही भयंकर है पूतना। आपने भी शायद पढ़ा नहीं होगा कि किसी ने स्तन में जहर पिला के बच्चों को मार डाला। कितना बदमाश इसका बुद्धि होगा। ये भगवान कहते हैं कि पूतना सबसे नीच है, हद कर गई। पूतना ने नीचता का हद कर ली, तो भगवान ने कहा आपने नीचता का हद कर ली तो मैं मेरा जो सर्वोच्च गुण है उद्धार करने का, मैं उस हद को भी पार कर लूंगा। अगर आप नीच से नीच हो सकता है, मैं अच्छे से अच्छा बन सकता हूं। तो भगवान ने बता दिया कि आप नीच हो, पर मैं अपना स्वभाव को भूलूंगा नहीं, बदलूंगा नहीं, मैं नीच को भी, पतित को भी, अधम को भी उद्धार करा दूंगा। इस प्रकार से भगवान एक पतित पावन नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, एक अधम को भी उद्धार करने वाले हैं, ऐसे वे प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि ये गुण भगवान को दिखाना था कि अधम से अधम अगर पूतना है, उससे अधम हम नहीं हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं मेरे भक्त बनते हो और भक्ति में लगते हो। पूतना अधम है और भगवान अधम उद्धार है। ये कितना अच्छी बात है कि भगवान अधमों को उद्धार करते हैं। क्योंकि आज हम अपने बारे में सोचे, मैं आपके बारे में नहीं कर रहा हूं, अगर हम अपने बारे में सोचे, आप सब तो बहुत अच्छे भक्त हैं, अपने बारे में सोचे तो हम कितने पतित हैं, हम अधम हैं, हमारा क्या होगा। भगवान तो भक्त वत्सल है, भगवान भक्त वत्सल है और हम भक्त नहीं है, तो हमारा चांस कब लगेगा। भगवान भक्तों का उद्धार करेंगे, भक्त वत्सल है तो भगवान हमारे ऊपर नजर कब डालेंगे, कृपा दृष्टि कब डालेंगे, वो हम सोचते रह जाएंगे, क्योंकि हम भक्त है ही नहीं। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप लोग क्रोधित मत हो जाइए, ऐसे कैसे कह दिया, मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि हम भक्त नहीं है। तो भगवान कहते मैं दीन बंधु हूं, कृष्णा ये वासुदेवाय, मैं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु है, मैं दीन बंधु हूं। तो फिर हम कहेंगे हम आप दीन के बंधु हैं, पर हम दीन नहीं है। दीन का अर्थ होता है जो विनम्र है, पर हम तो कलयुग के स्पेशल जीव हैं, हम कैसे दीन हो सकते हैं। हमारे अंदर अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। मैं आपके बारे में नहीं कर रहा हूं, आप लोग गुस्से से मत देखिए, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, हमारे अंदर इतने अहंकार है, हम कभी दीन होंगे और कब कृष्ण हमारे बंधु बनेंगे, हम कब उस दीन बंधु का कृपा प्राप्त करेंगे। ना तो हम भक्त हैं, ना तो हम दीन हैं, तो हमारा चांस क्या है। तो भगवान कहते हैं मैं पूतना का उद्धार किया, मेरा एक गुण है, मैं अधम उदार अधमों को भी उदार कर देता हूं, पतितों को भी पावन कर देता हूं, यह है मेरा गुण। तो आप निरुत्साहित मत हो जाइए। ये बात, ये जो पूतना का वध का, पूतना मोक्ष का कथा है, वास्तव में हम सबको, हम सबके हृदय में एक एक कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत करा देता है कि कृष्ण इतने नीच से नीच का उद्धार कर सकता है, हम तो इतना नीच नहीं है, तो हमारा चांस भी जरूर लगेगा और हम भी भक्ति में लग जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। पतित पावन है और हम पतित हैं, हम अपने बारे में कह रहे हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं पतितों में भी मैं नंबर 1 पतित हूं, पतित पावन हेतु तब अवतार। मौसम पतित ना पाए बे आप, मेरे जैसे पतित नहीं मिलेगा तो जरूर कृष्ण का कृपा हमारे पर होगा, होगा और जरूर होगा। तो भगवान ने ऐसा सुंदर लीला किया है, ये भगवान का दिव्य कर्म है। 6 दिन के बालक है, पूतना इतनी बड़ी राक्षसी है, और जब वो मरी तो इतने लंबी हो गई थी, तो भगवान डर गए। ये तो कंस का, मेरे मामा कंस के द्वारा दिया गया खिलौना है, और यहाँ वृंदावन में गिरेगी, तो वृंदावन के मासूम मेरे भक्त उनके ऊपर गिरेगी और उनका हाल बेहाल हो जाएगा। तो भगवान तुरंत सोच ले, जिसके जूते उसका सर, कंस का जूता कंस के सर। तो कंस के द्वारा भेजा गया पुतना उड़कर गिरी कहाँ पे, कंस के बगीचा में, और कंस का बगीचा तहस नहस हो गया। और नंद महाराज पूतना का प्रशिक्षण निरीक्षण करते हैं, और सारे गोपियां आकर भगवान का अलग अलग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनके लिए कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण उनके प्यारे लाडला लाला है, पर कृष्ण भगवान नहीं है, उनके लिए भगवान नारायण है। ब्रजवासी के लिए कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि वो भगवान के दैवी माया के अंतर्गत है। और भौतिकवादियों के लिए भी कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि वो भगवान के महामाया के अंतर्गत है। ब्रजवासियों के लिए कृष्ण भगवान नहीं है, भौतिकवादियों के लिए कृष्ण भगवान नहीं है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि ब्रजवासियों के लिए नारायण भगवान है, विष्णु भगवान है। और जब नंद महाराज ने देखा कि कृष्ण बाल गोपाल कृष्ण वहां पे लीला कर रहे हैं, पुतना के छाती में खेल रहे हैं, तो ताकि नारायण ने उसे बचाया। ब्रजवासियों के लिए नारायण भगवान है, नरसिंह देव भगवान है, नरसिंह देव ने मेरे बेटे को बचाया है। जब भी राक्षसों का वध हो जाता है, यशोदा मैया सोचती है, मैंने इनको नहलाया आज सुबह और तिलक लगाया, ये तिलक के प्रभाव से इनका रक्षा हुआ है, नारायण ने उनका रक्षा किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कृष्ण इसका वध किया है। भौतिकवादी ना तो कृष्ण को भगवान मानते हैं, ना तो नारायण को भगवान मानते हैं। वो इनको छोड़कर अपने आप को या किसी और को भगवान मानते हैं, यह है फर्क। तो इस प्रकार से पूतना वध का ये सुंदर लीला सबसे पहला लीला है भगवान का, और इस लीला से भगवान हम सबको आस्वादन करा रहे हैं कि ठीक है, पूतना का अगर मैं उद्धार कर सकता हूँ, आप पूतना जैसे नीच पतित तो नहीं है, आप भी आ जाइए, आपको भी मैं क्या गति दूंगा, ये आप मैं नहीं कहूंगा, ये कितना आपका गति होगा, आप ही इसका अनुमान लगाते रहिए। तो आज भगवान ने और एक लीला किया है, एक असुर जिसका नाम था अरिष्ट्रा, ये अरिष्ट्रा असुर को भगवान ने आज मार दिया था। अरिष्ट्रा असुर कंस के द्वारा भेजा गया था जब कृष्ण लगभग 7 साल के थे या 8 या 9 साल के थे। ये गोवर्धन धारण करने के बाद का लीला है। कृष्ण एक दिन वे गोवर्धन के नजदीक चल रहे थे, तो देखा कि सारे ब्रजवासी कांपने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत भयंकर सांड जानते हैं, भयंकर बुल बैल जो था धड़ 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 भाग के आ रहा है। जैसे जैसे वो अपना पांव नीचे जमीन में रखता तो पूरा भूमि कांपने लगा और उनसे सांस से उसके नाक से गर्म हवा और अग्नि निकल रही थी। सारे ब्रजवासी डर गए, ब्रजवासियों को डर देखकर भगवान डर गए, भगवान चिंतित हो गए। फिर पीछे मुड़ के देखा तो यह है अरिष्टासुर। भगवान ने उसके रूप पे नहीं गए, देखा कि ये तो बैल का रूप लेकर आया है, कौन? अरिष्टासुर। और अरिष्टासुर अपने सिंह से कृष्ण को मारने का प्रयास किया, धड़ 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 तेज गति से आ रहे हैं। तब कृष्ण ने क्या किया, ब्रजवासियों की ओर देखा, ब्रजवासी डर गए थे। इन सबको आस्वादन देने के लिए कृष्ण ने सबके सामने उस अरिष्टासुर को के सामने अपने मुक्का ऐसे ही आगे बढ़ाया। जैसे ही भगवान के हाथ लग गए, अरिष्टासुर का शरीर तहस नहस हो गया, उसका मुंह से दांत गिर गए, उसके मुंह से आंख फट गए, उसके कान तीतर बितर हो गए और खून रक्त पथ होकर इस अरिष्टासुर के शरीर से उसका आत्मा चला गया। और सबके देखते देखते अरिष्टासुर का आत्मा कृष्ण में लीन हो गया और अरिष्टासुर का उद्धार आज के दिन भगवान ने किया। अरिष्टासुर उद्धार लीला की। तो अरिष्टासुर का जैसे वध हो गया तो कृष्ण थोड़ा कॉलर टाइट कर लिया, कॉलर तो नहीं था, वो अपना उत्तरी जो है उसको टाइट कर लिया और ऐसे ऐसे देखने लगे, अपने दाहिना हाथ अपने दाहिने कमर में रख दिया और ऐसे बायां हाथ अपने जांग के और अकड़ के देखने लगा गोपियों की ओर और गोपों की ओर। पर जितने भी सखियां थी राधा रानी के, वे लोग कृष्ण से दूर जाने लगे दर दर के। और कृष्ण और थोड़ा कॉलर टाइट किया, बोला कि देखो मैंने क्या करामत कर लिया। पर देखा ये गोपियां दूर जा रही है, तब कृष्ण को लगा दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं, अरे दाल ही पूरा काला है। तो बोला ये गोपियां क्यों मेरे से दूर हो रही, मैंने तो इतना बड़ा अरिष्टासुर का वध किया। चुपके से कृष्ण सारे ब्रजवासियों से दूर हो गए और गोपियों के पास आए। जैसे गोपियों के नजदीक आए सारे गोपियां भागने लगी। तो बोला क्या हुआ, आप सब भाग क्यों रहे हैं? बोला आपने एक बैल का वध किया है। बैल नहीं, ये असुर है, अरिष्टासुर है। तो क्या हुआ, इंद्र ने भी जब असुर का वध किया, वो असुर तो उसको प्रायश्चित करना पड़ा, वृतासुर का वध किया। इसी प्रकार से ये बैल का रूप लेकर आया, आपको गोहत्या का पाप लग जाता है। तो कृष्ण ने गोहत्या का पाप, तो मुझे क्या करना होगा बताइए। तो बोला आपको इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ है उस तीर्थ में जाकर प्रायश्चित करना होगा। भगवान को आया क्रोध, कहा कि प्रायश्चित और मैं, और अपना पांव जोर से पटका। नहीं, गोपियों का तो नहीं हम भी आपसे नहीं मिलेंगे। तो बोला नहीं नहीं नहीं, बताइए क्या करना होगा, जाइए प्रायश्चित करके आइए। तो कृष्ण ने कहा मैं ब्रज नहीं छोड़ूंगा। क्यों? वृंदावन परित्याज पदम एकम न गच्छति, मैं एक पद भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा, आप सबको मैं नहीं छोड़ूंगा, तो हम आपके पास नहीं आएंगे। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। तब कृष्ण ने आदेश दिया, वे अपने भगवत तत्व को प्रकट किए और कहा इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ है वो सब तीर्थ मेरे समक्ष प्रकट हो जाए। और कृष्ण के समक्ष सारे तीर्थ प्रकट हो गए और कहा कि ये तीर्थ कृष्ण के समक्ष प्रकट हो गए। और कृष्ण ने उसी वक्त वहां पे कुंड बनाया और सारे तीर्थ इस ब्रह्मांड के जितने भी है, आप कोई भी तीर्थ ले लो, गंगा यमुना और कावेरी सरस्वती प्रयाग तीर्थ राजा, वो आ गए हाथ जोड़े और कहा कि इसी वक्त यहां पर प्रकट हो जाइए। और देखते ही देखते सारे मूर्तिमान तीर्थ प्रकट हुए, प्रणाम किए और पानी के रूप में बदल गए और कृष्ण उस कुंड में डुबकी लगाए और वापस आए और कहा कि अब मैं पवित्र हो गया, सारे तीर्थों का जल इस कुंड में आ गया और उस तीर्थ का नाम, उस कुंड का नाम पड़ा श्याम कुंड। बोलो श्याम कुंड प्राकट्य की। तो गोपियां आप सब अब मुझसे मिल सकते हैं या मैं तुमसे मिलूंगा। गोपियां फिर से भागने लगा। नहीं, गोपियों से कहा कि मैं तो पवित्र हो गया पर आप भी पवित्र हो जाइए, जरा श्याम कुंड में डुबकी लगाइए। तो गोपियों ने कहा नहीं, इसमें आपका पाप है। तो कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं है, अब मैं पवित्र हो गया, आप लोग अपवित्र हैं, आप लोग तीर्थों का अब भ्रमण कीजिए। गोपियों ने कहा नहीं, हम भी एक कुंड बनाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी ने अपने कंगन को तोड़े और वहां पे जोर जोर से खुदाई करने लगे, खुदाई करने लगे। तो पसीना पसीना से तरतर होने लगी। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, आप लोग से नहीं होगा, आप लोग मेहनत मत कीजिए, आप मेरे कुंड में स्नान कीजिए। सारे गोपियों ने कहा नहीं। तो तुरंत उन्होंने कुंड बनाए और मानसी गंगा से एक और भगवान ने एक लीला किए थे, मन से गंगा को प्रकट किए थे, वो मानसी गंगा हो गया। ब्रजवासी ब्रज को छोड़ने वाले थे तो कृष्ण का ब्रज छोड़ोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करने गंगा में डुबकी लगाने के लिए। भगवान ने कहा कि नहीं, आप मत जाइए। और गंगा को प्रकट किया और वहां पे मानसी गंगा, तो मानसी गंगा से गोवर्धन तक जल लेके आ रहे थे सारे गोपियां, भगवान से राह ले गया। गोपियों से कहा कि आप लोग रुक जाइए, मत कीजिए, पर गोपियां उनके एक नहीं सुने, जल भर रहे। तब कृष्ण ने सारे तीर्थों से कहा आप सब जाइए राधा रानी के पास और उनके सामने कहिए कि आप के कुंड में हम लोग आ जाएंगे, आप कृपा करके हमें सेवा का अवसर दीजिए। राधा रानी ने स्वीकार नहीं किया, पर गोपियां बहुत थक गए, फिर से सारे तीर्थ राधा रानी के पास आए और राधा रानी से भीख मांगने लगे, कृपा करके सेवा का अवसर दीजिए, आपके इस कुंड में हमें आने का मौका दीजिए। तब राधा रानी सारे गोपियों की ओर देखे और गोपियों ने कहा ठीक है। तब प्रयाग तीर्थराज ने सारे तीर्थों से कहा कि चलो इस राधा रानी के द्वारा बनाया गया जो कुंड है इसमें हम लोग अभी प्रकट हो जाएंगे। और जल के रूप में सारे तीर्थ प्रकट हो गए और राधा रानी और सारे गोपियां उस कुंड में डुबकी लगाए और डुबकी लगाकर जब वापस आए राधा रानी और जित सारे गोपियां कृष्ण से कहे अब हम भी पवित्र हो गए। और कृष्ण इस कुंड को देखकर भाव विभोर होकर लोटपोट होने लग गए और कृष्ण फिर से राधा कुंड में डुबकी लगाए और फिर से खड़े हो गए, बोले मैं भी पवित्र हो गया। और इस प्रकार से सुंदर लीला आज के दिन प्रकट हुआ और ये राधा कुंड को देखकर भगवान इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि भगवान उस तीर्थ को, उस राधा कुंड को दर्शन करने के लिए, राधा कुंड को स्पर्श करने के लिए, उसमें लीला करने के लिए रोज प्रातः ठीक 10 बजे प्रकट हो जाते हैं राधा कुंड में। प्रातः 10 उनके नित्य लीला में कृष्ण रोज 10 बजे राधा कुंड। और ये राधा कुंड इतना सुंदर है कि कृष्ण उस कुंड से दूर जाना ही नहीं चाहते। इस कुंड को इतना सुंदर बनाया गोपियों ने कि देखने वाले देखते रह जाते, तो कृष्ण तो देखते ही रह जाते हैं। आज भी अगर हम राधा कुंड जाएंगे उस कुंड को देखकर हम भाव विभोर हो जाएंगे। जैसे कृष्ण सुंदर है, कृष्ण सबसे सुंदर है क्योंकि वो श्याम सुंदर है, सबसे सुंदर है। कृष्ण का नाम सुंदर है, पर आज उस नाम के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमें भवरोग हो चुका है। पर जिसे प्रेम हो चुका है उनके लिए कृष्ण का नाम इतना मीठा है कि वो कृष्ण 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 है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये नाम उनके मुख में सदा रहेगा और कृष्ण को देखते ही वो रह जाएंगे, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर है। जिसके आंखों में प्रेम का अंजन है वो कृष्ण को देखते ही रह जाएंगे, कृष्ण उनको सबसे सुंदर लगेंगे। और जिसके आंखों में प्रेम का अंजन नहीं है, प्रेमा अंजन चुरी तो भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदयेषु विलोकयान्ति। जिनके आंखों में प्रेम का अंजन नहीं है वो बोलेंगे कृष्ण भी तो सुंदर है, पर वो भी तो सुंदर है। जिनके आंखों में काम का अंजन है कृष्ण को तो देखेंगे, फिर देखेंगे वो भी तो ठीक है। काम अंजन चुरी तो भक्ति विलोचने ना, उनका आकर्षण। पर जैसे जैसे हमारे अंदर भक्ति का भावना बढ़ जाता है, चेतना उन्नत होता है, तो कृष्ण अत्यधिक सुंदर लगते हैं। वैसे ही आज भी अगर हम भक्ति करके जाएंगे तो हमें राधा कुंड अति सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। राधा कुंड में जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण राधा कुंड को जल को देखकर, राधा कुंड के पत्तों को देखकर, राधा कुंड के फल को देखकर कृष्ण को राधा रानी का स्मरण होने लग जाती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति। इसलिए अगर कोई कृष्ण के लिए फल फूल जल और पत्ता अर्पण करे तो कृष्ण को राधा कुंड का स्मरण हो जाता है और उस भक्त के ऊपर वो कृपा बरसाते हैं। राधा कुंड के फल को देखकर, राधा कुंड के जल को देखकर, राधा कुंड के पत्तों को देखकर उसके फूल को देखकर राधा रानी का स्मरण होता है। राधा कुंड में जब लहर उठती है उस लहर से सफेद जाग जब निकलती है तो कृष्ण को राधा रानी के छाती में जो सफेद मोती, इसका स्मरण हो जाता है। राधा कुंड में जो कमल के फूलों को देखते हैं तो कृष्ण को राधा रानी के कमल अस्त का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार से कृष्ण राधा कुंड को देखकर, और ये राधा कुंड इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कहते हैं कि राधा कुंड का जल और राधा कुंड का जो कुंड है वो कुंड इतना सुंदर है, रत्न इत्यादि से बना गया है और इतना सुंदर है कि उसमें तोते, हंस, कोयल, अच्छे अच्छे पक्षी आते हैं और कुंड के जल को स्पर्श नहीं करते हैं। कुंड के जो बाहर का हिस्सा है उधर जाते हैं और वो इतना सुंदर है, देखने वाले सोचते हैं कि यहाँ पे जल है। दिखने में वो जल जैसा रहता है, तब ये पक्षी जब राधा कुंड के उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जल समझ के चोंच लगा के पीने का प्रयास करते हैं तो चोंच पत्थर में लग जाता है, तो पता लगता है कि ये जल नहीं है। इतना सुंदर गोपियों ने राधा कुंड बनाया। जिस प्रकार से दुर्योधन राजसीय सभा में पानी या पानी पानी को पृथ्वी समझकर पांव रखा तो डूब गया, उसी प्रकार से राधा कुंड में इतना सुंदर है राधा कुंड। राधा कुंड के आठों दिशा में अलग अलग कुंज है और ये कुंज का नाम ललिता कुंज है, विशाखा कुंज है, रंग देवी का कुंज है, सुदेवी का कुंज है। और ठीक 10 बजे भगवान कृष्ण आते हैं राधा रानी को ढूंढने के लिए और सारे कुंजों में वो चक्कर लगाने लगते हैं, राधा रानी मिलती नहीं है। और ये कुंज इतने सुंदर है, जैसे ललिता सखी का कुंज स्वानंद सुखद कुंज, इसका वर्णन आता है। वो कुंज में भगवान झूला झूलते हैं, जब भगवान झूला झूलते हैं, कृष्ण झूला झूलते हैं राधा रानी के साथ, ललिता विशाखा चामर मोरपंख दुलाते हैं और गोपियां उनको गोल घेर लेते हैं। सारे गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण राधा रानी के साथ तो झूल रहे हैं पर मेरी ओर देख रहे हैं, इधर इधर, ऐसे सुंदर लीला भगवान का। कृष्ण के अलग अलग कुंजों में अलग अलग वर्णन आता है। एक सखी, उनका नाम है इंदुलेखा, उन्होंने भी एक कुंज बनाया। उस कुंज के पत्ते, उस कुंज के फूल, उस कुंज के फल और उस कुंज के घास सब सफेद है और उस कुंज के झूला वो भी सफेद है। कृष्ण उस कुंज में आते हैं और राधा रानी भी उस कुंज में आती है। कृष्ण और राधा रानी उस कुंज में रहते हैं सफेद वस्त्र पहन के। दूर से अगर कोई देखे तो उन्हें पता नहीं लगता, सब कुछ सफेद सफेद है। वहां पे कोयल भी सफेद है, उस कुंज के तोते भी सफेद है, उस कुंज के हंस भी सफेद है। जब तक कोई आवाज ना करे तो पता नहीं लगेगा ये तोता है ये और ये कोयल है। आवाज करेगा तो पता लगता है अरे ये तो सब यहाँ पे कोयल है, क्योंकि सब कुछ सफेद सफेद है, कैमुफ्लेज, सब कुछ सफेद। तो इस प्रकार से सुंदर कुंज है और कृष्ण इस कुंज में राधा कुंड में आते हैं, लीला करते हैं। राधा कुंड में अनेक अनेक लीला भगवान ने किए हैं और राधा कुंड को इस सृष्टि के, भगवान के इस भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के सर्वोच्च स्थान कहा गया। इसलिए रूप गोस्वामी अपने उपदेश अमृत के आखिरी उपदेश में कहते हैं, भक्तों को चाहिए अपने भक्ति में परिपक्व होकर राधा कुंड में निवास करें और पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाए। ये श्लोक जब, ये ग्रंथ जब प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में अनुवाद तात्पर्य के साथ दिए तो अमेरिका यूरोप में भक्त लोग उपदेश अमृत को पढ़कर सारे मंदिर के मंदिर खाली हो गए। जितने भी मंदिर के अध्यक्ष प्रभुपाद जी को कंप्लेन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी आपने क्या ग्रंथ लिखे कि सब लोग अमेरिका यूरोप छोड़कर मंदिर खाली करके वृंदावन गोवर्धन राधा कुंड में आके निवास करने का टिकट बना दिए। मंदिर तो खाली हो गया, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत और एक पत्र लिखा सारे मंदिरों को, सारे मंदिर के अध्यक्ष को, सब भक्तों से लिखना ये उपदेश अमृत का 11वां श्लोक है कि भक्त को चाहिए कि राधा कुंड में निवास करें। उससे पहले 10 और श्लोक है और उसमें से सबसे पहला श्लोक है, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगय तो सर्वमपि प्रीतिं च शिष्यात्। इस प्रकार से 11वां श्लोक में जाने से पहले कृपा करके पहले श्लोक में थोड़ा ध्यान दे, जो 11वां श्लोक में जाने से पहले श्लोक का जो क्वालिफिकेशन है उसे पूरा करे, फिर बाद में राधा कुंड आने का प्रयास करे। तो वापस सारे भक्त चले गए। प्रभुपाद जी जब सारे शिष्यों को वृंदावन लेकर आए तो ये सारे शिष्य राधा कुंड में आए तो प्रभुपाद जी राधा कुंड में डुबकी नहीं लगाए, हल्का सा आचमन किए और जप कर रहे थे हरे कृष्ण। पर जितने भी शिष्य थे वो थोड़ा राधा कुंड को देखकर सोचा कि बहुत ही सुंदर कुंड है तो इसमें स्विमिंग करते हैं, छलांग लगाने लगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, दिस राधा कुंड, ये राधा कुंड श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है, अर्थात ये राधा कुंड का जल राधा रानी का शरीर है, इसे पवित्र भाव से आदर के साथ स्पर्श करें और इसे आदर दे, ना कि इसे खेल कूद का मैदान बनाए। और कहा कि कोई भक्त राधा कुंड में स्नान नहीं करे। तो आचमन करते हैं और नाज्ञा का पालन। सुखदेव गोस्वामी महाराज, नारद मुनि, चार कुमार आज तक राधा कुंड में डुबकी नहीं लगाए, क्योंकि ये राधा रानी से अभिन्न है। राधा रानी के अनेक अनेक सुंदर सुंदर लीला है। ये राधा कुंड भगवान के लीला संपन्न के बाद अप्रकट हो चुका था। चैतन्य महाप्रभु खोज करके उस कुंड को निकाले और श्याम कुंड को भी ढूंढ कर निकाले। रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि आप कृपा करके इसे सुंदर रूपरेखा दीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे, मैं तो वृंदावन भजन करने आया, हरे कृष्ण करने आया, अब कौन कंस्ट्रक्शन करेगा और कौन माप लेगा और कौन डोनेशन लाएगा, फंड रेजिंग कौन करेगा। सोच रहे थे गुरु का आज्ञा भी पालन करना, पर रघुनाथ दास गोस्वामी इतने महान संत थे, सोच रहे थे कि धन कहाँ से मिलेगा। तो एक सेठ जी, वो राजस्थान से हिमालय बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे, बद्रीनाथ भगवान को धन देने के लिए। पर रात को जब वो हरिद्वार पहुंचे तो उनके सपने में भगवान आए, कहा कि आप बद्रिकाश्रम मत आइए, बद्रीनाथ मत आइए, वापस वृंदावन जाओ। बोला क्यों? वहां पे मेरा एक भक्त है रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको धन की आवश्यकता है, उसे सारा धन दे दो। तो वो सोचने लगे, भगवान ने फिर से कहा एड्रेस ठीक से नोट कर लेना। तो बोला यस यस। फिर अगले दिन सुबह राधा कुंड आए, धन दे दिया रघुनाथ दास गोस्वामी। उस धन से कारीगरों को बुलाए और राधा कुंड आज जैसे हम लोग देखते हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा बनाया गया था लगभग 500 वर्ष पहले। राधा कुंड अष्टकम की, राधा कुंड अष्टमी की, ये राधा कुंड अष्टमी है। आज बहुलाष्टमी भी कहा जाता है, इसे राधा रानी का जन्म भी कहा जाता है। आज के दिन आप राधा कुंड में देखोगे अनेक अनेक भक्त आएंगे, पता नहीं कहाँ से लाखों की संख्या में राधा कुंड का जय जयकार करते हुए परिक्रमा करते होंगे, देखते रह जाएंगे। भक्त लोग कहाँ कहाँ से, लंबे चौड़े गोरे काले पीले, हम सोचते रह जाएंगे ऐसे भक्तों को तो आज तक हमने देखा नहीं। कहते हैं कि देवी देवता रूप बदल कर आ जाते हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं, ये कहेगा कि ये तो इस्कॉन के गोरे भक्त हैं। फिर कोई कहेगा, इस्कॉन वाले कहेंगे नहीं ये तो हमारे इस्कॉन के नहीं है, हो सकता है घोड़े मठ के होंगे, और घोड़े मठ वाले सोचते हैं इस्कॉन के। इस प्रकार से देवी देवता भी राधा कुंड का आज परिक्रमा, इतना संख्या कहाँ से आए पता नहीं लगता है, लाखों की संख्या में आज परिक्रमा करते होंगे। और आज के दिन कोई भी राधा कुंड में डुबकी लगाए प्रेम से, वो जरूर भगवान कृष्ण का प्रेम भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त करेगा। राधा कुंड अष्टमी की, श्रीमती राधा रानी की, श्रील प्रभुपाद की, गौर हरि प्रेमानंद, हरे कृष्ण। राधा कुंड के विषय में और बहुत कुछ है, पर संक्षेप में आपको कुछ मुख्य बातें बताएं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, आज ठीक 1 बजे आप आइए रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में। यदुबारा प्रभु प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक हैं, जिन्होंने प्रभुपाद जी के अनेक अनेक चित्र निकाले हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर। उनका आज प्रवचन होगा, बहुत शुरू के वह भक्त हैं, उनसे आप जरा जरूर कथा श्रवण कीजिए, उनका संग प्राप्त कीजिए, जरूर कृपा होगी और प्रभुपाद जी के प्रति हमारा आकर्षण और बढ़ेगा और भगवान के हम और अच्छे भक्त बन सकते हैं। ठीक 1 बजे आप आइए और उनका कथा का लाभ प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण।
Oh no.